बीबीसी इंडिया बोल 4 फरवरी दिन शनिवार, मैं हूं रेहान फदल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने जोरों पर है। कहीं नोटबंदी को मुद्दा बनाने की कोशिश है तो कहीं राम मंदिर और समाजवादी पार्टी में पड़ी फूट को। क्या जनता के वास्तविक मुद्दे इस चुनाव प्रचार में जगह पा पाए हैं? यही है आज यानी 4 फरवरी को होने वाले इंडिया बोल का विषय। अगर आप इस विषय पर अपने विचार रखना चाहते हैं तो फोन मिलाइए 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। पंजाब और गोवा में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। पंजाब में 117 सीटों के लिए मतदान हुआ, वहीं गोवा में 40 सीटों के लिए वोट डाले गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पंजाब में शाम 5 बजे तक करीब 70% और गोवा में 83% वोट डाले गए। अमरीकी कस्टम विभाग ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा है कि जिन 7 मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद प्रतिबंधित किया गया था, उन्हें अमरीका की यात्रा करने दें। इसके बाद कई एयरलाइंस कंपनियों ने तत्काल प्रभाव से आदेश पर अमल की जानकारी दी। वहीं कुछ कंपनियों का कहना है कि अभी आदेश को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इसके पहले अमरीका के सिएटल की एक कोर्ट ने ट्रंप के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। जज ने कहा कि आदेश अमरीकी संविधान के एक अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। सरकार ने कहा है कि वो जज के आदेश के खिलाफ अपील करेगी। ट्रंप ने भी इस आदेश की आलोचना की है। अमरीका ने पूर्वी चीन सागर के विवादित टापुओं पर जापान के नियंत्रण के प्रति एक बार फिर समर्थन जाहिर किया है। जापान के दौरे पर गए अमरीका के नए रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा कि अमरीका सेनकाकू द्वीप पर जापान के प्रशासन को मान्यता देता है। चीन भी इस द्वीप पर अपना अधिकार जताता है। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो इस मुद्दे में दखल नहीं दें। वहीं मैटिस ने पड़ोसी देशों में दखल देने के लिए चीन की आलोचना की। उन्होंने कहा,
चीन
ने इस क्षेत्र के देशों के भरोसे को तोड़ दिया है। वो पड़ोसी देशों की राजनयिक सुरक्षा और आर्थिक स्थितियों पर वीटो करने की कोशिश करता है। ये थे जेम्स मैटिस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पूर्वी यूक्रेन के रूस समर्थित विद्रोहियों के मुताबिक एक कार बम धमाके में उनके एक वरिष्ठ कमांडर की मौत हो गई। विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि कर्नल ओलेंग अनाशचेंको की कार को यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने उड़ा दिया। प्रवक्ता ने इसे चरमपंथी कार्रवाई बताया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वहाँ शुक्रवार से संघर्ष जारी है। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि वो ईरान से निपटने के लिए मध्य पूर्व में अमरीकी सैनिकों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं देख रहे हैं। फिलहाल ईरान में सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान ईरान में कम दूरी की मिसाइल और रडार प्रणाली का परीक्षण हो रहा है। इस अभ्यास के एक दिन पहले अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीका के मुताबिक ये प्रतिबंध रविवार को बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की वजह से लगाए गए हैं। इस बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल हुसैन सलामी ने प्रतिबंधों को खारिज करते हुए कहा, आज मैं ये ऐलान कर सकता हूं कि हमारे दुश्मनों की ओर से रक्षा प्रणाली पर लगाए गए प्रतिबंधों की कमर पूरी तरह टूट गई। आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। ये थे जनरल हुसैन सलामी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में अमेरिका के समर्थन वाले कुर्द और अरब लड़ाकों का कहना है कि वो रक्का में नया अभियान शुरू कर रहे हैं। रक्का उत्तरी सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह का प्रमुख गढ़ है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का कहना है कि उनकी योजना रक्का के पूर्वी हिस्से पर अधिकार हासिल करने की है। इसमें एक अहम सड़क भी शामिल है। फोर्स ने नवंबर में अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके लड़ाकों ने शहर के उत्तरी हिस्से की घेरेबंदी कर ली थी। इस अभियान को ओबामा प्रशासन का समर्थन था। अब राष्ट्रपति ट्रंप की टीम इसकी समीक्षा कर रही है। माली के मेनाका शहर में हुए हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई। हमला सुबह के वक्त हुआ, उस समय सैनिक रात की गश्त से वापस लौट रहे थे। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल। इंडिया बोल में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव के लिए मात्र 8 दिन बाकी रह गए हैं। 80 और 90 के दशक में जब दिलीप पणगांवकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री के पद के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक का होता है, तो इस पर बहुत बवाल मचा था। राजनीतिक हलकों में ये बात कई बार कही जाती रही है कि असल में देश में देश के प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। इस वक्तव्य पर भी बहस हो सकती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय राजनीति में एक अहम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तमाम मुद्दों पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन क्या जनता के वास्तविक मुद्दों को चुनाव प्रचार में जगह मिल पाई है? इस प्रश्न पर लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह। स्वागत है आपका अजय सिंह बीबीसी स्टूडियो में। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक का जो चुनाव प्रचार हुआ है उसे आप किस तरह से देखते हैं?
जी, अब तक जो चुनाव प्रचार हुआ है उसमें बहुत कुछ तो सामने आया नहीं, जो आप जैसा आप कह रहे थे कि जनता से जुड़े मुद्दे, तो मुद्दे जो उठ रहे हैं वो इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, और अभी तक सेंटिमेंटलिज्म ही इसका सेंट्रल पॉइंट है इलेक्शन का। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन सामने आता जाएगा तो ऑफकोर्स लोग जो रियल इश्यूज़ हैं वो सामने आएंगे, और हमारा ये मानना है कि सेंटिमेंट जो होता है इसका एक बहुत छोटा दायरा होता है, अल्टीमेटली जो वास्तविक इश्यूज़ होते हैं उसी पे वोट पड़ता है, तो हमें उम्मीद है कि वो वास्तविक इश्यूज़ पे ही वोट पड़ेंगे।
तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं बीबीसी के श्रोताओं को। सबसे पहले टेलीफोन लाइन पर हैं उमेश कुमार यादव। उमेश, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। आप दिल्ली से हैं संभवतः, अपना प्रश्न पूछिए अजय सिंह से।
जी रेहान सर नमस्कार।
नमस्कार
अजय सर। नमस्कार
जी। नमस्ते।
मेरा सिंपल सी बात कहनी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर रोज आप देखेंगे राजनीतिक दलों के रंग बिखरे हैं, जनता तो बेचारे की कोने में बेरंग सी पड़ी हुई है। अगर कहीं देखें तो किसी दल का पारिवारिक कलह है, तो कोई दल अपनी खोई जमीन तलाश रहा है, किसी को मंदिर याद आ रहा है, किसी को जाति धर्म। उत्तर प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था या दम तोड़ता स्वास्थ्य सेवा तंत्र या बिकराल हुई बेरोजगारी, पस्त पड़ा किसान या हाफता काफता प्रशासनिक अमला किसी दल को परेशान नहीं कर रहे हैं। हर दल कुकल बांट रहा है, स्मार्टफोन बांट रहा है, और जाने खैरत में क्या क्या बांट रहे हैं। इन्हें शायद लगता है कि हर वोटर भिखारी है। इन्हें स्वावलंबी बनाने की बात इनके जेहन में क्यों नहीं आती है? भगवान शायद उत्तर प्रदेश को खैरातियों से बचाए, तभी भला हो सकता है प्रदेश का। धन्यवाद सर।
नहीं, बहुत बहुत अच्छे ढंग से आपने ये सवाल रखा, और बल्कि तो मैं यूं कहूंगा कि यूपी की जो हालात है उसको जिस तरह से इन्होंने कहा है वो असलियत है, और आज के दिन हकीकत भी यही है कि जो रियल इश्यूज़ हैं उस पर बात नहीं हो रही है। पर इसमें एक चीज़ जो आप भी देखते हैं और हम सब लोग देखते हैं, जनता जब वोट डालने जाती है ना, उस समय जनता हंसती है, क्योंकि जनता उस समय वो रियल इश्यूज़ पे वोट डालती है। तो अभी भले आप रंग भर लें, लेकिन असली रंग जनता भर देती है। अब ये बात अलग है कि वो आने के 5 साल बाद वो भी वैसे हो जाएं, तो ये बात एक अलग है।
अभी जैसा कि उमेश ने जिक्र किया, नोटबंदी, राम मंदिर, समाजवादी पार्टी में फूट, जाति धर्म, लेकिन वास्तविक मुद्दों का कोई जिक्र नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी कहीं भी जिक्र नहीं मिलता, तीनों गठबंधनों के।
देखिए ना, मैनिफेस्टो में अगर इसका जिक्र भी होता है तो ऐसा कर्सरी होता है कि जिसको लगता है कि आपने छू लिया है। इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि स्टार्वेशन डेथ्स हुई हैं। गोरखपुर के आसपास अमूमन हर साल ये रूटीन बन गया है कि एपिडेमिक फैलता है और बहुत लोग को मारता है, लेकिन आज तक इस पे कोई बहस नहीं हुई। कई जगह आर्सेनिक के पानी हैं, जिससे लोगों को दिक्कत होती है, इस पर कोई बहस नहीं होती है। तो ये वाकई में एक हकीकत है कि जो जो एक अगली फेस है राजनीति का, वो हम देखते हैं जिसमें कास्ट और बाकी चीज़ें आती हैं, लेकिन असलियत जो जो असली इश्यूज हैं उसको इग्नोर किया जाता है।
आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक और छोटा को। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप।
हेलो, मुझसे बात हो रही है?
जी हाँ आपसे बात हो रही है।
जी, शुक्रिया मुझे कार्यक्रम में जगह देने के लिए। मेरा भी जो हमारे श्रोता है उनके जैसा ही कुछ मानना है कि
नहीं इससे पहले कि आप अपनी बात शुरू करें, पहले अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं।
जी, मेरा नाम विकास है और मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रहा हूँ।
जी विकास,
तो जिस तरह, जी धन्यवाद सर। तो जैसे कि पहले हमारे श्रोता ने कहा, मेरा भी अमूमन मानना वही का वही है। एक तरह से अखिलेश अपने आप को क्रांति पुत्र के तौर पर पैदा कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं, और राहुल गांधी इस बीच चाहते हैं कि मेरी खोई जमीन मुझे मिल जाए। बीएसपी जो अपना पारंपरिक वोट बैंक था उसको छोड़ के कुछ नए समीकरण वो तलाश कर रही है, और बीजेपी अपना 2.5 साल का पुराना जो राग है वही अब भी अलपाए जा रही है। पर इस बीच में जो असल जो चुनौती है, इंडस्ट्री का कैसे विकास होगा, सड़कें कैसे ठीक होंगी, स्वास्थ्य के हालात कैसे सुधरेंगे, महिला सशक्तिकरण और एक आम आदमी का सशक्तिकरण कैसे होगा, इसका कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं। और बहुत बार तो हमें यह लगता है कि सभी राजनीतिक दलों की इसके ऊपर एक आम सहमति है कि लोगों को इस तरह के मुद्दों में उलझा के रखें कि जो रियल इश्यूज हैं उनके ऊपर वो बात ही ना करें। पर मुझे तो आखिर में मैं यही बस पूछना चाहूंगा कि यूपी का जो चुनाव है, क्या हमारे पूरे देश की राजनीति को समझने के लिए, उसके चरित्र को समझने के लिए कहीं सबसे सटीक अध्याय तो नहीं है ये?
अजय,
नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कॉन्सेंसस एक होता है जो कि आप जानबूझ के बिल्ड करते हैं, और उसमें हम सिर्फ राजनेताओं की ही बात नहीं करेंगे, मीडिया की भी बात करेंगे। वो ये कि डिस्कोर्स आप जानबूझ के ऐसा बना देते हैं जिसमें कास्ट संप्रदाय इसी पे डिस्कोर्स चलता रहे। वाकई में जो रियल इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, HDI जो होता है उसमें यूपी सबसे नीचे है, जिस जो कि इस बात का को इंडिकेट करता है कि आपके हेल्थ और शिक्षा ये और इनकम कैसे है, उसमें सबसे नीचे है, पर इसका कोई जिक्र नहीं करता है। तो ये बात
और ना ही एस्पिरेशन है, ना ये बताने की कोशिश होती है कि हम कुछ बेहतर करेंगे।
जनता में ये एस्पिरेशन है लेकिन राजनेता में नहीं है। वो जानबूझ के इसी जो सब्जेक्ट है उसको इतना कन्फाइन कर देते हैं कि आप उससे बाहर जा ही ना पाए।
आइए कुछ लोग और लाइन पर हैं, उनसे करते हैं बात। बताइए, परिचय दीजिए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
जी नमस्कार सर, मैं कुलवीर बाकर बोल रहा हूँ, गांव बिरान जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से।
जी हनुमानगढ़ से, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं?
चुनाव में सबसे ज्यादा यूपी गरमाया हुआ है, सभी सालों में इतने राज्य हैं लेकिन यूपी का चुनाव सबसे बड़ा होता है। जब भी चुनाव होते हैं कुछ एक विषय होते हैं उन्हीं के ऊपर लड़ा जाता है चुनाव। धर्म आरक्षण, सामाजिकता, भेदभाव, इन्हीं के ऊपर 2 महीने जिक्र होता है।
जी,
अभी हमारे राजस्थान में चुनाव इन्हीं मुद्दे पर जिक्र हुआ, हरियाणा में हुआ आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति हुई और चुनाव हो गए, लेकिन हरियाणा में भी तो दोबारा आरक्षण के लिए जाट आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। किसी चीज का मसले का हल नहीं है, चाहे हम धर्म के नाम पर चुनाव लड़ लें या जाति के नाम पर, राम मंदिर या मस्जिद किसी पर लड़ लें।
आप टिप्पणी कर रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म और जाति के मुद्दे पर ही चुनाव होते हैं, अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है।
जी, एक बात तो आप साफ मानिए कि यूपी का इलेक्शन, जैसा आपने खुद कहा कि यूपी का इलेक्शन छोटा इलेक्शन नहीं होता है, और यूपी का CM जो होता है वो प्रधानमंत्री के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी होता है, तो ये तो एक हकीकत है इलेक्टोरल उसमें अगर आप देखें। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसा नहीं है कि जाति और समुदाय, इनका बिहेवियर भी इस तरह का है। कहीं ना कहीं आप देखिए तो जब हरियाणा में इलेक्शन होता है या कहीं पे भी इलेक्शन होता है तो जाति के नाम पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका एबिलिटी इस पर कम होते हैं। तो जातिगत हमारे सोच में भी है, तो ये समाज के अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। राजनेता इसको नहीं कर रहा है, ये एक आस्पेक्ट है, समाज के रूप में भी हम फेल हो रहे हैं, ये दूसरा आस्पेक्ट है।
देखिए, अभी तक हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं, किसी भी श्रोता ने फ़ोन नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर से। इस समय उत्तर प्रदेश से आगरा से टेलीफोन लाइन पर हैं कमल यादव। कमल, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम, पूछिए अपना सवाल।
जी सर, मैं सुन रहा हूँ आगरा से, नहीं मैं सर कासगंज से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कासगंज पटियाली।
अच्छा जी, बताएं, माफ कीजिएगा गलत बताया।
जी जी, जी सर, ओके, मैं सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूंगा। उसके बाद सर जी, असलियत ये है कि कोई भी आज जो जितने सारे दल लड़ रहे हैं चुनाव, सारे पुराने दल लड़ रहे हैं, कोई भी नया दल नहीं लड़ रहा है, सारी पुरानी बातें हैं, लेकिन कहते कुछ है और करते कुछ है। इन लोगों के ऊपर जो मैनिफेस्टो होता है, पहले तो घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, फिर उसके बाद में उस पर अमल करें या न करें कोई कुछ नहीं कहता। सारे लोग धार्मिक जातवाद के ऊपर बात करते हैं, विकास से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, अगर कोई करता भी है। जी
जी जी,
अगर कोई कुछ करता भी है तो उसको उसको सही तरीके से लागू नहीं करता, अपने वर्ग विशेष तक सीमित रखता है।
तो आपकी नजर, आपकी नजर में विकास का मुद्दा किसी दल ने उठाया है उत्तर प्रदेश में? ये जो तीन प्रमुख गठबंधन हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? विकास का मुद्दा किसने सबसे ताकतवर ढंग से उठाया है?
जी सर, मेरी नज़र में वर्तमान जो अखिलेश जी हैं, उन्होंने वास्तव में धरातल पर कुछ कामों को किया है, जैसे रोड हुई, बिजली हुई, शिक्षा का क्षेत्र हुआ या मेट्रो हुई, कुछ नए काम किए हैं। लेकिन उन्होंने भी थोड़े से समय में क्या कहें, पारिवारिक कलह कहें, या वो भी विशेष क्राइटेरिया तक ही सीमित रह गए।
कमल यादव इशारा कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने बहुत काम किए हैं विकास के। मैं आपका ध्यान अजय दिलाना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा जुमला उनके कैंपेन में दिखाई दे रहा है, काम बोलता है, कैच वाक्य है। जिस तरह से चुनाव से एन पहले योजनाओं की उन्होंने झड़ी लगाई, आगरा लखनऊ हाईवे आप याद करिए, उस पर जहाज उतारा गया, आप समझते हैं अखिलेश यादव इस पैरामीटर पर खरे उतरते हैं विकास के?
नहीं, अगर आप हमसे पूछें तो व्यक्तिगत रूप से मेरी ये राय है कि अखिलेश यादव यूपी में अब तक के जो मुख्यमंत्री आए हैं उसमें सबसे खराब मुख्यमंत्री थे। उसकी वजह ये है कि इनके राज में जितने दंगे हुए उतने दंगे हमने 91 में देखे हैं। उसके अलावा हाईवे बनने से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं, डेवलपमेंट नहीं होता है सिर्फ एक हाईवे बनना। दूसरा ये है कि स्टारवेशन डेथ यहाँ पर हुई, हेल्थ के इश्यूज में अगर आप रखिए, या भ्रष्टाचार या लॉ एंड ऑर्डर, इसमें कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, खराब थी। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई मुख्यमंत्री 5 साल रहे और अगर ये बोले कि उसको लोगों ने काम नहीं करने दिया तो हमें लग रहा है ये मुख्यमंत्री के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो हमें उनके विकास के दावे कोई बहुत हद तक हमें आश्वस्त नहीं करते हैं कि उनका वो वाकई में एजेंडा है।
आइए कुछ और श्रोताओं को लेते हैं उत्तर प्रदेश से ही। सबसे पहले अपना नाम बताएं और बताएं कहां से बोल रहे हैं आप।
हम देवरिया जिले के कुकुंडी थाने के धनौती गांव से बोल रहे हैं, संजय यादव।
क्या बात है संजय यादव, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
अभी जो 5 साल का कार्यकाल अखिलेश सरकार ने पूरा किया, इसके पूर्ववर्ती सरकारों से सबसे सुपीरियर, सबसे बढ़िया काम किया है।
ये कह रहे हैं अखिलेश यादव ने, जो पहले सरकारें आएंगे, तुलना कर रहे हैं मायावती की सरकार से और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उससे बेहतर काम किया है।
यार्ड स्टिक्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपको बाहर से लग सकता है कि बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप फिगर उठा के देखें और आप अगर हकीकत देखें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि ये एक इम्प्रेशन बन सकता है कुछ लोगों में कि बहुत अच्छा काम किया है, और शायद अखिलेश ने ये सक्सेसफुली मैसेज दे दिया है कि उन्होंने काम किया है, और उनको अगर काम उन्होंने नहीं किया है तो उनको काम होने से रोका गया है, ये मैसेज उन्होंने दे दिया है, लिहाजा आप जो देख रहे हैं वही उसका रिजल्ट।
अच्छा, हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बारे में, थोड़ी बात की जाए भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव में अगर आपको याद हो, भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइजेशन के जरिए एक तरह से लैंडस्लाइड किया था, मोदी की भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपको लगता है इतिहास फिर अपने आप को दोहरा सकता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है रेहान भाई, उसमें थोड़ा सा हमारा एक अलग मत है। वो ये है कि पोलराइजेशन 2014 सिर्फ उसकी वजह से नहीं था, लोगों में एक्सपेक्टेशन था मोदी को लेके, कहीं ना कहीं लोगों में एक एक्सपेक्टेशन था कि ये आएंगे तो कुछ अलग होगा। ढाई साल का रिजीम आ चुका है, ढाई साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिस पे कि कोई ये कह सके कि साहब कोई ज़बरदस्त चेंज हुआ है। दूसरा, हमें जो बीजेपी की मुश्किल लग रही है वो ये कि बीजेपी ने जो कोर वोटर्स हैं उनको एक तरह से इग्नोर किया है। तो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जब भी आप इग्नोर करते हैं तो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मिलती नहीं है, कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटैक्ट रहती है और आपके पास एक ड्रीम रहता है जिसको आप लेके जाए। बीजेपी के पास इस समय ड्रीम हमें दिख नहीं रहा है।
लेकिन ये जो नोटबंदी का पूरा मसला था, पूरा जो प्लान था कि इसको एक्सप्लॉयट किया जाएगा, इसका फ़ायदा उठाया जाएगा, ये बूमरैंग कर गया। ये मतलब उनके जो मैनेजर्स थे उन्होंने ये सोचा नहीं कि ये उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से एन पहले इसकी घोषणा करना और इसकी गारंटी ना होना कि ये सफल हो पाएगा।
देखिए, नोटबंदी को राजनीतिक उससे अगर आप देखेंगे तब थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि मोदी जी का बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं होगा कि इलेक्शन से पहले आपने इतना ज़बरदस्त स्टेप क्यों लिया जिसमें लोगों को तकलीफ ही तकलीफ है, और आप तकलीफ के बाद क्या दे रहे हैं ये लोग आश्वस्त नहीं हैं। तो हमारे ख्याल से उसको उस रूप में देखना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इसका वाकई में इलेक्टोरल टर्म्स में क्या असर हुआ है अभी अंदाज नहीं है, क्योंकि आपको कई लोग गांव में ये कहते मिल जाएंगे कि साहब हमसे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ लोग को दिक्कत हुई जिनके पास पैसे हैं। तो हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में एक जो गैप हुआ है उसमें बीजेपी को फायदा होगा या लॉस होगा ये अभी अंदाज नहीं मिल रहा है।
आइए एक और श्रोता को लेते हैं, बताएं आप पहले अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं, आसनसोल से।
जी आसनसोल से, क्या नाम है?
नौशाद आलम।
जी नौशाद साहब बताएं, पूछें।
बोलना ये चाह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव और बीजेपी मिलकर एक काम अच्छा किया, जो लोग 570 दंगा कर यूपी में, आप ही के इससे सुने बीबीसी से।
आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, हम नहीं सुन पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है आप क्या पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइए अजय, ये जो तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं सब एक दूसरे से अलग, और आपको लगता है कि सभी राजनीतिक दल एक तरह का मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या ये संभव है आज के भारत में?
नहीं, मीडिया मैनेजमेंट, देखिए कैंपेन जो मैनेजमेंट होता है ना, मीडिया मैनेजमेंट वो नहीं होता है। हाँ ये ज़रूर होता है कि हम लोग कई बार उस कैंपेन में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो ये एक संभव हो सकता है। पर एग्जिट पोल ने ओवर द ईयर्स अपने को इतना झूठ साबित किया है कि हम एग्जिट पोल्स को सिर्फ ये मान के चले कि वो बहुत सही होंगे या रियल इंडिकेटर्स हैं, वो शायद हकीकत
लेकिन,
नहीं
लेकिन
है।
प्रोफेशनली अगर कोई चीज़ बहुत बुरी तरह से गलत होती है तो आपको लगता नहीं कि वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे बाद में, और इसके बावजूद वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं?
देखिए ये तब होता है जबकि एक बार हुआ हो। मान लीजिए आपने 10 बार सही किया है और एक बार हो गया है तो फिर लगता है कि अरे ये हमसे कैसे हो गया। लेकिन अगर 10 में 9 बार आपका रॉन्ग हुआ है तो 11th time भी अगर हो गया तो आपको एक शर्म नहीं रहती।
लेकिन लेकिन इसमें स्पॉन्सरशिप का पुट है
कई कई जगह, तो आपने देखा होगा वो तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस हुए थे जिसमें स्पॉन्सरशिप की बात हुई थी। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सारे पोल, देखिए कई पोल्स अच्छे होते हैं, जेन्युइनली होते हैं, पर इंडिया में एथनिक सैम्पलिंग इतनी मुश्किल है और इतनी डाइवर्स है कि आप जेन्युइन पोल भी करके अगर ये कहें कि सैंपल आपका सही होगा और सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है।
आइए एक और छोटा को लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं, बताएं।
जी नमस्कार सर, अनुपम सिंह यादव सुल्तानपुर बदलापुर जौनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
जी अनुपम, क्या पूछना चाह रहे हैं?
पूछना ये चाह रहे हैं सर, संजय साहब कह रहे हैं कि जो है नोटबंदी हुई उससे कि देश का फायदा हुआ या नहीं हुआ, मैं यह पूछना चाहता हूँ कितने बड़े लोगों ने लाइन लगा के पैसा निकाला और जमा किया, क्या मुकेश अंबानी ने कभी लाइन लगाई? या
देखिए देखिए आप ये विषयांतर कर रहे हैं, जिस विषय पर बात हो रही है आप उससे संबंधित सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप नोटबंदी से संबंधित सवाल, ये प्लेटफॉर्म नहीं है ये सवाल पूछने का। अजय हम लोग तमाम बातें कर रहे थे, समाजवादी पार्टी पे बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी पे बात हुई, थोड़ी बात की जाए बहुजन समाज पार्टी के ऊपर। उन्होंने 100 से अधिक मुसलमानों को टिकट दिए हैं, आपको लगता है कि मुसलमानों के वोट बांटने में वो सफल होंगे?
देखिए, आइडियली अगर आप पूछें तो मुस्लिम्स का सपोर्ट एसपी के साथ होता है, और मुलायम सिंह की जो हिस्ट्री रही है ना बाबरी मस्जिद वाली, वो मुलायम सिंह को वो छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन आज के दिन जो ये समाजवादी पार्टी है, ये एक अलग समाजवादी पार्टी है। बीएसपी के साथ उनका ऑप्शन होता है सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन में आप जा सकते हैं, पर हमारा दूसरा एक चीज़ कहना है वो ये कि बीएसपी नॉर्मली मीडिया के लिए अंडर एस्टिमेटेड पार्टी होती है। बीएसपी की स्ट्रेंथ अगर 93 ऑनवर्ड्स आप देखें, 93 फर्स्ट टाइम था जब एसपी और ये साथ आए थे, उसके बाद आप देखें तो अमूमन हम लोग बीएसपी को इग्नोर करते हैं, और बीएसपी साइलेंटली बड़ा अच्छा काम करती है, और साइलेंटली वो अपने लोगों को अच्छे ढंग से ले
आती है। 2007 में जो उनका सोशल इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें जो एक अम्ब्रेला ग्रुप था, उसमें सिर्फ दलित नहीं शामिल थे और भी, आपको लगता है वो आपको दोबारा होता दिखता है?
नहीं, अपेरेंटली तो आपको नहीं दिखता है, क्योंकि 2007 में ये था कि एसपी को हराना था। इस बार भी अगर ये बीएसपी और एसपी में टिल्ट हो गया, उस तरह की स्थिति टिल्ट हुई, तो अपर कास्ट का एक सिग्निफिकेंट चंक अगर चला जाएगा इनके साथ, तो हमें बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। और हमारा हमेशा मानना है कि बीएसपी इंडिया में मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड पार्टी है।
आइए चलते हैं सुल्तानपुर, वहां टेलीफोन लाइन पर हैं इंद्र प्रकाश यादव। बताइए इंद्र प्रकाश, क्या पूछना चाहते हैं आप?
जी सर नमस्कार, मैं पूछना नहीं चाहता हूँ सर, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक सुझाव है। मैंने सबके मैनिफेस्टो के देखा, मुझे किसी मैनिफेस्टो में ये बात नहीं मिली जो मेरे चार चीजें हैं, जैसे एक करप्शन फ्री स्टेट बनाना, मतलब अगर करप्शन नहीं होगा या करप्शन के खिलाफ कुछ करते हैं तो जो भी सुविधाएं जो भी चीजें अनाउंसमेंट होता है सबको मिलेगा, पहली बात। तो दूसरी चीज है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, और तीसरी चीज गुड गवर्नेंस जिसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात कोई नहीं कर रहा, और चौथी चीज अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ी समस्या आज की स्टेट में इस समय है,
वही
इसके बारे में भी चारों पार्टियों ने कोई बात नहीं की।
बिल्कुल सही आपका ऑब्जर्वेशन है। और एक चीज और, ये इस पर हम बात कर चुके हैं अजय, ये बताएं कि ये जो तमाम सोप्स दिए जा रहे हैं, लैपटॉप, प्रेशर कुकर, नई चीज आ गई है, आपको लगता है ये आज के भारत में इन सब चीजों की अभी भी गुंजाइश है? क्या जयललिता से ये लोग
कुछ बोले रहे हैं? कुछ कुछ तो उसको आप मान के चलिए कि डायरेक्शन वही है, लेकिन इन सोप्स को लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप सोप्स लेके और आप वैसे ही वोट करते हैं जैसे आप चाहते हैं। तो अक्सर ये होता है कि लोग सॉप्स ले लेते हैं लेकिन वोट अपने हिसाब से करते हैं।
तो इसी नोट पर बीबीसी इंडिया बोल को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह आपका, और सारे श्रोताओं का जो पूरे भारत से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और सभा की समाप्ति से पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। पंजाब और गोवा में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पंजाब में शाम 5 बजे तक करीब 70% और गोवा में 83% वोट डाले गए। अमरीकी कस्टम विभाग ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा है कि जिन 7 मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद प्रतिबंधित किया गया था, उन्हें अमरीका की यात्रा करने दें। अमरीका की एक कोर्ट ने ट्रंप के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वो जज के आदेश के खिलाफ अपील करेगी। अमेरिका ने पूर्वी चीन सागर के विवादित टापुओं पर जापान के नियंत्रण के प्रति समर्थन जाहिर किया है। चीन भी इस द्वीप पर अपना अधिकार जताता रहा है। उसने अमेरिका से कहा है कि वो इस मामले में दखल न दे। पूर्वी यूक्रेन के रूस समर्थित विद्रोहियों के मुताबिक एक कार बम धमाके में उनके एक वरिष्ठ कमांडर की मौत हो गई। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि ईरान से निपटने के लिए मध्य पूर्व में अमरीकी सैनिकों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सीरिया में अमेरिका के समर्थन वाले कुर्द और अरब लड़ाकों का कहना है कि वो रक्का में नया अभियान शुरू कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
आज की सभा में इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।